प्रस्तुत है महिला हिंसा अभियान की छठी कड़ी। जोहर श्रोताओं, मैं सरस्वती
और मैं शशि
स्वागत करते हैं आपका महिला हिंसा अभियान की छठी कड़ी में।
सबसे पहले हम सराहना करना चाहते हैं बागमारा धनबाद से नेहा भट्ट और शिवपूजन हजारी जी को, जिन्होंने महिला हिंसा के मुद्दे पर स्वरचित नाटक बनाकर झारखंड मोबाइल वाणी पर रिकॉर्ड करवाया।
तो श्रोताओं, इनके लिए झारखंड मोबाइल वाणी की तरफ से ढेर सारी तालियां।
अरे सरस्वती, मुझे अभी याद आया, आज तो महिला हिंसा की आखिरी कड़ी प्रस्तुत की जा रही है ना?
हाँ शशि, इरादा तो यही था कि इस अभियान की आखिरी कड़ी हम आज प्रस्तुत करेंगे, पर हुआ यूँ कि हमारे श्रोताओं ने हमें ढेर सारा प्यार और अपनी प्रतिक्रियाएं देकर बाध्य कर दिया कि हम उन्हें महिला हिंसा के मुद्दे से जुड़ा उच्च पदाधिकारी और प्रमुख लोगों के साक्षात्कार सुनाएं।
तो सरस्वती, आज महिला हिंसा अभियान की आखिरी कड़ी में हमारे श्रोताओं के लिए क्या लाई हो?
आज हमारे साथ हैं झारखंड महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती महुआ मांझी। आइए सुनते हैं उनके साथ किया गया साक्षात्कार।
नमस्कार महुआ मांझी जी, झारखंड मोबाइल वाणी के महिला हिंसा अभियान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाएं महिला आयोग की सहायता ले सकती है।
देखिए, घरेलू हिंसा है, उत्पीड़न है, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, इसके अलावा दहेज के कारण अगर प्रताड़ित किया जा रहा हो और यातना, किसी भी तरह की यातना दी जाती हो, फिर अगर उसके पति दो विवाह कर ले, एक पति एक पत्नी के रहते दूसरी विवाह कर ले, तो ऐसे मामले भी यहाँ आते रहते हैं। फिर बलात्कार का अगर केस हो, रेप केस, फिर जैसे कहीं थाने में वो केस दर्ज करने जाती है कोई महिला और वहाँ FIR दर्ज करने से मना कर दिया जाता है, तो ऐसे में वो हमारे पास आ सकती हैं, हम फिर संबंधित थाने से बात करेंगे। और पति द्वारा निडरतापूर्वक व्यवहार किया जाए या किसी और मेंबर के द्वारा भी, तो वो भी इसमें आ जाएगा। किसी भी प्रकार का दुराचार, सेक्सुअल हरासमेंट, किसी भी तरह का लिंग विभेद, मान लीजिए महिला और पुरुष में अगर लिंग विभेद किया जाए, तो ऐसे मामले भी, जैसे है ना, कई जगह कई कार्यालयों में महिलाओं के साथ थोड़ा अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, तो ऐसे मामले भी लेकर वो आ सकती हैं। और यौन उत्पीड़न तो है ही इसमें, किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न, तो ऐसे बहुत सारे मामले आ जाते हैं जो कि महिलाओं से संबंधित हैं। सिर्फ क्रिमिनल केस जो हो जाता है, जैसे जिसमें हत्या हो गई, या उसमें तो फिर पुलिस थाने में ही उनको केस दर्ज करना होगा। और हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग के द्वारा उनकी समस्या का समाधान किया जाए, ताकि कोई परिवार ना टूटे। या कई महिलाएँ होती हैं जो डरती हैं कि उनकी बदनामी होगी, उनके घर परिवार की बदनामी होगी समाज में, तो लोग ना जाने, इसीलिए बहुत सारे गुनाहों को भी, अत्याचार को भी वो सहती हैं, और थाना पुलिस और कोर्ट कचहरी से में जाना नहीं चाहती इन चीज़ों में। लेकिन आयोग में अगर वो आएंगी, तो हम भरसक कोशिश करते हैं कि बंद कमरे में उनकी बातचीत हो दोनों पक्षों में, और दोनों आपस में कुछ, दोनों में काउंसलिंग करा के कुछ सुलह कराने की हम कोशिश करते हैं कि बातचीत के माध्यम से सुलह हो जाए। और जब सुलह हो जाती है, तो हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं, लिखवा लेते हैं दोनों पक्षों से, कि एक पक्ष राजी हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम ये देंगे, मान लीजिए पैसे देने की बात है या उसे झगड़ा ना करने की बात है, वो लिख कर देता है, और दूसरा पक्ष उसमें वो भी लिख के देंगे कि हाँ हम दोनों में सुलह हो गई, मैं इससे सहमत हूँ। फिर वो अंडरटेकिंग ले ली जाती है, वो कागज़ एक दस्तावेज के रूप में रहता है। उसके बाद अगर उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो आगे की कार्रवाई होती है, तो ये हम लोग करते हैं।
आपके पास सबसे अधिक किस किस प्रकार के मामले आते हैं?
ऐसे तो यहाँ बहुत तरह के मामले आते हैं, लेकिन इधर जो अभी, चूँकि अभी हाल ही में मैंने ज्वाइन किया है, तब से लेकर ज़्यादातर मामले आए हैं कि पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी आ जाती है, और महिला किसी दूसरी महिला के साथ पति रहने लगते हैं या उससे संबंध रखते हैं, तो पत्नी परेशान रहती है, बच्चों का भविष्य क्या होगा। कई मामलों में है कि पति अपनी पत्नी को और बच्चों को पैसे नहीं देते दूसरी औरत के साथ रहना, ये मामले सबसे ज़्यादा हैं। और दूसरा, बुज़ुर्ग महिलाओं का भी आजकल ज़्यादा यह हो रहा है, क्योंकि बुज़ुर्ग महिलाएं आती हैं ये कहने के लिए कि उनकी बहू, उनका बेटा उन पर अब टॉर्चर कर रहा है, उनके पैसे छीन ले रहे हैं, उनको, उनकी देखभाल नहीं करते, उनको घर से निकाल देते हैं, तो इस तरह के मामले भी इन दिनों बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
महिलाएं किस प्रकार से महिला आयोग की सहायता ले सकती है, इसकी प्रक्रिया बताएं।
देखिए, एक तो अगर कुछ जाती है, तो वो लोकल जो थाना है, आजकल तो बहुत जगह महिला थाना भी खुल गया है, वहाँ जाके वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकती हैं। और अगर उनको लगता है कि नहीं, हम इस मामले को तूल नहीं देंगे, तो वो आयोग में भी आकर आवेदन दे सकती हैं। और यहाँ फिर उस चीज़ को ज़्यादा हम लोग प्रचारित नहीं करते हैं, सिर्फ संबंधित व्यक्ति के पास हमारा नोटिस जाता है, और फिर जब उनके पास भी नोटिस जाएगा और जो शिकायत दर्ज करेंगे उनके पास भी नोटिस जाएगा, एक डेट हम लोग फिक्स कर देते हैं, इस डेट में कोर्ट है, तो उस डेट में फिर उनको आना होगा, दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों में जिसके खिलाफ होगा, अगर 4-10 लोग भी हैं तो भी सबको हम लोग बुलाते हैं, यहाँ ऑफिस में आएंगे, आके फिर बातचीत के माध्यम से वही जो पहले मैंने बताया कि अग्रीमेंट वगैरह भी होता है यहाँ बैठकर।
अब झारखंड वासियों को, खासकर महिलाओं को किस प्रकार का संदेश देना चाहती हैं?
मैं महुआ माझी झारखंड मोबाइल वाणी के माध्यम से झारखंड की तमाम महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि यदि उनके साथ कोई हिंसा हो रही है तो वह चुप ना बैठे, उनके लिए महिला आयोग है, हम उनके साथ न्याय करने की, उन्हें सम्मान दिलाने की, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे।
आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हमें, आशा करते हैं कि हमारे श्रोता भी इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो आइए अब सुनते हैं झारखंड महिला सामाख्य सोसाइटी की निदेशक श्रीमती डॉक्टर स्मिता जी का साक्षात्कार।
नमस्कार डॉक्टर स्मिता जी, झारखंड मोबाइल वाणी के महिला हिंसा अभियान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी संस्था महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या क्या कार्य करती है?
देखिए, महिला सामाख्या जो है महिलाओं के लिए ही काम करती है, और इसमें किशोरी लड़कियां भी होती है, लेकिन चूंकि ये कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं है, हम उन महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से ही जागरूक करते हैं, और जितने भी हमारे विषय हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कानूनी जो हिंसा की बात हम करते हैं, आर्थिक स्वरोजगार की बात करते हैं, उन पर हम उनकी एक पकड़ बनाते हुए आगे ले जाते हैं। और जब महिलाओं की तरफ से ही ये बात आती है कि अब हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम छोटे मोटे रोजगार खुद चला सकते हैं, तब हम उनको स्वावलंबन की ओर जोड़ते हैं। लेकिन अगर हम आर्थिक स्वावलंबन को छोड़ के बाकी स्वावलंबन की बात करें तो उसमें तो हमारी बहुत बड़ी पकड़ होती है, और यही है कारण है कि आज महिलाएँ जो हैं वो अपनी चार दीवारी से निकल कर वो पूरा स्टेट लेवल तक खुद बिना किसी सहयोग के चली आती हैं। तो ये हम स्वावलंबन की दिशा में काम करते हैं।
आपकी संस्था ने झारखंड में महिला हिंसा रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं?
देखिए, जब हम किसी भी क्षेत्र में जब काम की शुरुआत करते हैं और हम महिलाओं से जब बात करते हैं तो ज़्यादातर जगह में यही देखा गया है कि उनकी प्राथमिकता जो होती है कि किस तरह से अपने ऊपर जो हिंसा हो रही है उसको, उससे हम कैसे अपने आप को बचाएं, बचाव के क्या रास्ते होंगे। तो महिला हिंसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है झारखंड के लिए के सिनारियों में। जहाँ तक महिला सामाख्या की बात है तो वो एक तो है, हम महिलाओं को जागरूक करते हैं कि किसी भी तरीके का हिंसा या प्रताड़ना तुम्हारे ऊपर हो रहा है तो ये गलत है, उसका प्रतिरोध करना सीखो, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि अगर प्रतिरोध के बावजूद भी नहीं ये कम हो रहा है तो तुम इसकी जानकारी कम से कम अपने समूह में दो, क्योंकि फिर वहाँ पे एक संगठन काम आ जाता है। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो संगठन, सारे संगठन मिलके थाना में दो। तो इस तरीके से एक पूरा चैनल है, और हम उनको बकायदा बताते हैं कि तुम्हारे लिए, ठीक है, आम जनता के लिए ये जगह है जहाँ पे तुम अपनी बात जाके कह सकती हो, बता सकती हो, लिख सकती हो, दे सकती हो। लेकिन चूँकि जो थाने की जो व्यवस्था है वहाँ पे कोई भी महिलाएं आमतौर पे जाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनसे बात व्यवहार किया जाता है तो उनसे घबराती हैं। तो उस पर हम लोग का ये कहना होता है कि आप थाने पे, वो आखिरी सीमा है, ठीक है, लेकिन पहले कोशिश करो कि ये जो भी घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ में, हम उसका सामाजिक स्तर पे कैसे हम उसको दूर कर सकें, क्योंकि जो सामाजिक स्तर पे होगा ना वो एक टिकाऊ होता है। आप थाने में चले जाओगे तो हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए बंद कर देगा, लेकिन उसके बाद जो दुश्मनी और बढ़ जाने की संभावना होती है। और मकसद ये होना चाहिए कि परिवार में उस महिला को एक इज्जत की ज़िंदगी जीने का मौका मिले, हक मिले, उससे लोग प्यार से बात करें, उससे जो जो बाकी सदस्य के लिए है वही इसके लिए भी हो, इसके लिए कोई अलग चीज़ ना हो। तो इस तरीके की हम महिला हिंसा की बात करते हैं उनसे बीच में। हम उनको कानून के बारे में बताते हैं, मोटे मोटे कानून बताते हैं कि अगर आपके साथ में इस तरीके की हिंसा होती है तो इसमें कानूनी प्रावधान ये है, ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये सब बातें जो हम सामाजिक स्तर पर ही उनको बताते हैं ताकि जो अगला व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ महिलाएं अपना शिकायत दर्ज कराती है उनको भी एक डर की भावना आती है कि अगर हम नहीं मानेंगे तो सच में हमको जेल जाना पड़ेगा। तो उसमें नहीं नहीं अब हम अच्छे से रखेंगे, और अच्छे से रखते हैं फिर महिलाएँ उनका पूरा फॉलोअप भी करती है। तो ये इस तरीके हम लोगों ने क्या किया, महिला समाख्या ने क्या किया है कि जो भी जब महिलाएं अपने ये जो हिंसा हो रही है उसके प्रति जागरूक हो जाती हैं तो वो छोटे मोटे जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं महिलाएं आके अपनी शिकायत करती हैं समूह के पास में, तो समूह अपने स्तर से उसको सुलझाती है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो जटिल होते हैं, जो समूह अपने स्तर पर नहीं सुलझा पाती है वो ऊपर ब्लॉक लेवल पे आ जाते हैं, प्रखंड स्तर पे आते हैं, क्योंकि समूह तो गांव स्तर पे बने हैं। अब प्रखंड स्तर पे जब इनकी बात होती है कि भी ऐसे कुछ समस्याएं हैं जहाँ पे हमें एक फोरम की ज़रूरत है, जहाँ पे हम दूसरे लोगों से भी सलाह ले सकें, वहाँ पे फिर नारी अदालत की बात होती है जो हमारे द्वारा चलता है। तो महिला समाख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है नारी अदालत, मतलब कि गांव से अगर वो सुलझ नहीं पा रहे हैं, समूह सुलझ नहीं पा रही है, उसको सुलझा नहीं पा रही है, तो वो सारे केस प्रखंड स्तर पे आ जाते हैं। अब प्रखंड स्तर पे जो नारी अदालत है इनकी अपनी एक कमिटी है, उसमें सब महिलाएं हैं। अब वहाँ पे जब केस आती है तब वो दोनों फिर लोग अपने इनके सिस्टम है वो पूरा जाँच करती है, जाँच करके दोनों पार्टी को बुलाती है। वो भी एक तरीके का देखा जाए तो वो सोशल जस्टिस का एक फोरम है, कहीं कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है, और वहाँ से उनको एक न्याय मिलता है, उन महिलाओं को न्याय मिलता है। यदि ब्लॉक स्तर पे नहीं सुलझ पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ फिर जिला में आ जाता है, और जब जिला स्तर पर बहुत ही जटिल है, मान लीजिए कि जो अगला व्यक्ति है जो एक्यूज्ड है वो काफ़ी परेशान कर रहा है, किसी भी चीज़ में वो समझौता करने को तैयार नहीं है, तो वो स्टेट में आता है, ये एक चेन बना हुआ है। लेकिन जब इसके बावजूद भी नहीं आता तब हम लोग लड़की को बोलते हैं अब तुम केस कर दो। तो केस मुकदमा वो आखिरी चरण, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो सामाजिक स्तर पे वो सुलझा, और हम लोगों ने सुलझाए भी, मतलब ज़्यादातर जो है समूह अपने स्तर पे केस को सुलझा देती है।
क्या आप महिला हिंसा के विषय पर अपनी कोई आंखों देखी या अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगी जिसमें महिला समाख्या सोसाइटी ने अहम भूमिका निभाई हो?
पहला यूथ ग्रुप बना और हम खूंटी में गए, हमने लोगों से बातचीत की, हमने कहा कि तुम लोग क्या क्या काम करते हो बताओ। तो उसमें एक लड़की ने कहा कि दीदी एक हम लोग बहुत अच्छा काम किए। हमने क्या काम किए, तो हमने दो लड़की को दिल्ली जाने से रोक लिया, है ना। तो हमने कहा कि क्यों रोका, तो क्योंकि वो हमारी मंच की लड़की थी, किशोरी मंच जो मंच की लड़की थी। तो हमने कहा कि अगर मंच के बाहर की लड़की होती तो नहीं रोकते क्या तुम, तो बोलते नहीं रोकते, तो फिर क्या करना चाहिए। तो वो दीदी इसमें बहुत लड़की जाती है तो हमने क्या करना चाहिए, इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। ये मुद्दा वहीं से निकलता है, मतलब जो बैकग्राउंड है हर इश्यूज़ का वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और वही तो हमने कहा कि तब हमने पूछा कि तुम लोग क्या करोगे इसके लिए, तो बोले दीदी हम लोग को तो पता नहीं है, आप बताइए कि क्या। और वहीं से हम लोगों ने खूंटी में पूरा मानव व्यापार को लेकर पूरा कैंपेन मोड में काम करना शुरू किया। उसके बाद बेड़ों में हुआ, रांची बेड़ों में, बुढ़मू में हुआ कि हमारे यहाँ भी बहुत लड़कियाँ हैं दीदी, हम लोग भी यहाँ अभियान चलाएंगे। इस तरीके से इस मुद्दे पे एक्सपेंशन होता चला गया और वो वहाँ का मुद्दा बनते चला गया।
आप झारखंड वासियों को खासकर महिलाओं को किस प्रकार का संदेश देना चाहती हैं कि अगर उनके साथ हिंसा हो रही हो तो वे उसका विरोध करने के लिए किससे और कहाँ से सहायता मांग सकती हैं?
जोहर श्रोताओं, मैं झारखंड मोबाइल वाणी के माध्यम से डॉक्टर स्मिता गुप्ता, निदेशक झारखंड महिला समाख्या सोसाइटी की तरफ से सभी रांची के वासियों को, झारखंड के वासियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से हिंसाएं, हिंसा के जो नए नए तरीके हैं वो आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और कम होने की बजाय जो दर में वृद्धि हो रही है, मैं ये चाहूँगी कि सभी माएँ अपनी बेटियों को इस बात से सुनिश्चित करें कि यदि कोई हिंसा उनके साथ होती है तो वो खुल कर बताएं, पहली बात। दूसरी चीज़ कि उनको बातचीत के क्रम में, घर में, परिवार के बीच बातचीत के क्रम में उन्हें ये ज़रूर महसूस कराए कि हिंसा क्या है। हिंसा का मतलब सिर्फ मारना पीटना नहीं होता है, हिंसा के और भी कई तरीके होते हैं जिनको हम हिंसा की श्रेणी में लेते हैं। तीसरी चीज़ उन्हें यह भी बताएं कि अगर कोई हिंसा हो रही है तो अगर स्कूल में है तो सबसे पहले अपने टीचर को बताएं, अपने सीनियर्स को बताएं, घर में अपने परिवार को बताएं और ज़रूरत पड़ती है तो आप स्थानीय थाना में भी जरूर इसकी जाके शिकायत करें। जहाँ तक गाँव की बात है, महिलाओं को खुलकर अपनी चार दीवारी से बाहर निकलें और अपने ऊपर किसी भी तरीके की हो रही जाति को आसपास की महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह को, पंचायत प्रतिनिधियों को और स्थानीय थाना जो भी आपके संपर्क में हैं, आप उनको ज़रूर अपने बारे में बताएं कि हमारे साथ इस तरीके की हिंसा हो रही है। और आज के दौर में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं जो आपकी तरफ सहायता करने के लिए आगे आएंगे, लेकिन दूसरे लोग आए इससे पहले आपको खुद आगे आना पड़ेगा, खुद प्रतिरोध करना पड़ेगा और खुद जागरूक होना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आप हमारी आज की कड़ी में प्रस्तुत जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी श्रोताओं के लिए लाएंगे 16 दिसंबर के दिन महिला हिंसा अभियान पर हमारी ओर से आखिरी प्रस्तुति, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कि महिला आयोग जैसी सरकारी संस्थाएं और दर्पण जैसी गैर सरकारी संस्थाएं महिला हिंसा रोकने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही हैं।
आइए चलते चलते सुनते हैं फतेहपुर जामताड़ा से गौतम मंडल जी द्वारा रचित नारी हिंसा पर एक कविता।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कहने वाले जाने कहाँ खो गए। अमृत स्रोत मानो सूख गया है, हम और अधिक बर्बर हो गए। हमने तेजाब को हथियार बना डाला है, उत्पीड़न और यातना को प्यार बना डाला है। ये कैसी हवा है, ये कैसा आलम है। हमने नैसर्गिक अवदान को व्यापार बना डाला है। क्या हम और अधिक क्रूर हो गए हैं, फिर जीवन के लक्ष्य से बहुत दूर हो गए।
श्रोताओं, जैसे गौतम जी की कविता हम सभी के दिल को छू गई, वैसे ही अगर आप महिला हिंसा के विषय पर अपनी कोई प्रतिक्रिया या नाटक, कविता इत्यादि जैसी प्रस्तुति पेश करना चाहते हैं तो दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करवाएं अपने विचार।
धन्यवाद।